ओम शांति। हम सबके बीच आदरणीय कमलेश दीदी जी पहुंच चुकी हैं। आप 52 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है। अभी वर्तमान समय आप उड़ीसा सब जोन के इंचार्ज हैं। आपके कनेक्शन में 100-125 सेंटर और 200 गीता पाठशालाएं हैं, जो बहुत ही सुचारू रूप से आप उनको चला रहे हैं। और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर आपने अपने कदम न रखे हो। हर जगह आपने अपनी सेवाएं दी हैं। उड़ीसा के तो आप फाउंडर हैं और हम सब तो आपको उड़ीसा के महाराजा कहते हैं, क्योंकि बाबा ने भी आपको ये टाइटल दिया है कि उड़ीसा उड़ने और उड़ाने वाला है। और सचमुच में आपकी पालना से हर एक भाई बहन हमेशा उड़ते और उड़ाते रहते हैं। ऐसे महाराजा के लिए हम सब दिल से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। अब हम सब आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। फिर बोलो जोर से, ओम शांति। और एक बार बोलो, दादी जी 3 बार ओम शांति कराती है। ओम शांति, ओम शांति। सिर्फ ऐसे मुख से नहीं कहना है, लेकिन उसके स्वरूप में स्थित होना, माने मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो एक है मुख से कहना और एक है स्वरूप में स्थित होना। तो बाबा ने हमें क्या बताया है, हर बात में स्वरूप बनो। हम सभी बाबा के बच्चे यहाँ किस लिए आए हैं? प्यारे थे प्यारे और ऊंचे थे ऊंचे, निराले से निराले, भगवान से मिलने के लिए आए। किस लिए आए हैं? ये हमारा घर है। क्या है? घर। मधुबन सबसे प्यारा सभी का घर है, और अपने घर में प्यारे बाबा से मिलने आए हैं। इस घर को घर भी कहा जाता है और यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, हॉस्पिटल भी कहा जाता है और आश्रम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां भी सत्संग होते हैं वहां जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन यहाँ बाबा के घर में हमारे जीवन का बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो बिना लक्ष्य के सब सत्संग दुनिया में होते हैं, लेकिन सारे सत्संगों में एक ही सत्संग है, शिव बाबा का घर और शिव बाबा का सत्संग, जो सबसे निराला है और सबसे ऊंचा बनाने वाला है और जिसमें लक्ष्य है। जिस प्रकार से पढ़ाई में लक्ष्य होता है कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, वैसे हमारे विद्यालय में भी लक्ष्य है हमें क्या बनना है। बोला आप लोग क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। हमारा उद्देश्य है कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त कर सकती हैं। अब हमें देखना क्या है कि हमारी पढ़ाई में सब्जेक्ट कितने हैं, हमने पास कितने किए हैं और कितने में हम कमजोर हैं, और जिनको हमें भरना है हमारी इस पढ़ाई में। उस पढ़ाई में क्या होता है, 8-8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट मालूम है ना सबको? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और चारों सब्जेक्ट एक से एक ज्यादा बढ़कर ऊंचा है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो बाबा की याद कैसे करोगे? ज्ञान होगा तब तो याद करोगे, और अगर याद नहीं करोगे तो जीवन धारणा मूर्त नारी लक्ष्मी और नर नारायण समान कैसे बनेगा? तो याद करने से हमारे जीवन में धारणा आती है, और जब धारणा आती है तो हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं कि आप भी अपना जीवन ऐसा बनाओ। और यह आने से हमारा जीवन कैसा बनता है? बहुत ऊंचा बनता है, महान बनता है। पर ऊंचा जीवन बनाने के लिए हमें बुद्धि का विकास करना होता है, और बुद्धि का विकास किससे होता है? आध्यात्मिक अध्ययन से। जितना जितना आध्यात्मिक अध्ययन करते जाएंगे उतना उतना बुद्धि का विकास होता जाएगा। पर अध्ययन भी हम कब करेंगे और कब हम आगे बढ़ेंगे? जब हमें पहले नंबर में क्या होता है? संपूर्ण निश्चय होता है। कोई गृहस्थी है, क्या मैं ट्रस्टी हूँ? लेकिन गृहस्थी ट्रस्टी कब बन सकता है? जब उसकी विदेही अवस्था की स्थिति का अनुभव होगा, वही गृहस्थी ट्रस्टी बन सकता है। विदेही होगा, शिव बाबा में 100% निश्चय होगा। अगर कोई कहे कि मुझे मुरली से प्यार नहीं है, या मुरलीधर से प्यार है और मुरली से इतना नहीं है, लगन रोज नहीं पढ़ता हूँ, तो भी उसकी स्थिति ऊंची नहीं बन सकती और वो विदेही नहीं बन सकता है। तो गृहस्थी को बाबा क्या कहते हैं? गृहस्थी मत समझो, लेकिन ट्रस्टी समझो। और ट्रस्टी माना ही आत्मिक स्थिति का अनुभव करना, और अपने जो ईश्वरीय मर्यादा है, नियम है, उनका पालन करना, साधना करना। या कोई संत महात्मा की तरह पर्वत पे नहीं जाना है, गेरु वस्त्र नहीं पहनने हैं, लेकिन हमें साधना क्या करनी है? अच्छाइयों को धारण करना है और बुराइयों को छोड़ना है। तो जितना जितना बाबा में निश्चय होता जाता है, पढ़ाई में निश्चय होता जाता है, ड्रामा में निश्चय होता जाता है, उतना उतना हमारे अंदर वो ताकत आती जाती है कि हम वो साधना के लायक बन जाती है। कि जो ईश्वरीय मर्यादाएं, जो ईश्वरीय नियम है, जो ईश्वरीय संयम है, बातें हैं, उन सबको हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो बाबा ने हमारा जीवन कितना ऊंचा बनाया, हमें भी सबसे पहले यही वरदान दिया कि विजयी भव। विजयी भव किसको वरदान मिलता है? निश्चय बुद्धि को। तो आप भी तो सब निश्चय बुद्धि है ना, तब तो बाबा के घर में आए हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिशंती। हमारा इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए पर हम अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़े। इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने ज्योतिषियों को दिखाया कि मुझे संतान कैसे होगी। तो उसने कहा कि कोई अपने बच्चे को जब बलि चढ़ा देगा तो आपको संतान हो जाएगी। तो उसने चारों तरफ अनाउंस करा दिया कि कोई अपना बच्चा देगा तो मैं उसको, मतलब बलि देगा तो अपने राज्य का अधिकारी बना दूंगा और सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तो ये बात सुन के कि आधा राजपाट दे देगा, तो एक किसान था जिसके 10 बच्चे थे। तो उसने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा चला जाएगा तो क्या है, मैं राजा का, राज्य का, आधा राज्य का महाराजा बन जाऊंगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो उसका जो 10वां बच्चा था वो 10 वर्ष का था। तो उसने कहा कि सबसे छोटा ये है, इसी को हम बलि चढ़ा देते हैं। तो उसको वो ले गया। तब फिर राजा ने कहा कि अच्छा इसको अंदर लाओ। अंदर ले गया, छोड़ दिया उसे। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कुछ इच्छा है तो बताओ, अभी तुम्हारी बलि चढ़ेगी। अगर तुम्हारी कुछ मन में तमन्ना है, इच्छा है तो बताओ। उसने कहा कि हाँ मेरी कुछ इच्छा है। उसने एक रस्सी मंगाई और रस्सी में 3 घंटी लगाई, गांठ लगा दी, और फिर कहा एक कैंची लाओ। तो कैंची से एक को काटा, 2 को काटा, 3रे को नहीं काटा। तो राजा ने कहा कि इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है, समझाओ तब तुम्हें बलि चढ़ाई जाएगी। तो राजा ने कहा कि सबसे पहले एक बच्चे के जो पालक होते हैं, पालना देने वाले, वो उसके माता पिता होते हैं। तो आज मेरा माता पिता से भरोसा नहीं रहा, तो 3 मैंने इसमें घंटी लगाई है। माता पिता से भरोसा उठ गया कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और वो मेरी आज बलि चढ़ाने के लिए यहाँ दे गए। और दूसरा विश्वास होता है राजा का, राजा के ऊपर, क्योंकि राजा बच्चे को पालता है, प्रजा को पालनहार कहती है राजा को। तो आपके ऊपर से भी मेरा विश्वास हट गया। अब ये 3री गांठ है मैं नहीं खोलूंगा, बस एक मेरा विश्वास रह गया है परमात्मा के ऊपर। जो परमात्मा सच्चा पिता है उसके ऊपर मेरा विश्वास हो निश्चय, वो जरूर मुझे बचा लेगा। जब राजा ने इतनी बात सुनी तो राजा के मन में तुरंत विचार आया कि ये बच्चा तो बहुत चतुर है, मैं एक बच्चा पैदा करने के लिए 10 वर्ष के बालक की बलि लूं, उससे अच्छा है कि मैं इसको ही अपना क्यों नहीं बना लूं, एडॉप्ट कर लूं। तो राजा ने क्या किया, तुरंत अनाउंस किया कि ये बच्चे को मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसको अपना बेटा बनाऊंगा और अपना राज्य का अधिकारी बनाऊंगा। तो कौन सा निश्चय सच्चा निकला, शिव बाबा का, परमात्मा का। तो 2 निश्चय उसके टूट गए, 2 विश्वास टूट गए, लेकिन आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास नहीं टूटा। और उसको लेकर के वो विजय प्राप्त कर ली और वो उस राज्य का अधिकारी बना गया जिसको उसके माँ बाप छोड़ के गए बलि के लिए। तो कहने में ये बात कही जाती है, पर वास्तव में सच यहाँ पर है कि हमारा इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना दिल से बाबा का प्यार होना चाहिए कि दिल में एक बाबा के सिवाय कोई नहीं दिखाई दे। और वास्तव में सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं है, चाहे किसी को भी आप माता पिता, बहू बेटे बच्चे, जिसको भी आप मानते हो, जो भी है, सच्चा कोई नहीं है, सच्चा एक ही शिव बाबा है। टाइम पर सब छोड़ देंगे, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन परमात्मा साथी नहीं छोड़ेगा। वो इतना बड़ा हमारा साथी है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता है, और सब त्याग सकते हैं, छोड़ सकती है, जा सकती है हमें छोड़ के, लेकिन परमात्मा साथी आपको एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर साथ देगा, कल्प कल्पांतर हमें बाबा मदद करेगा और साथ देगा। आप कोई भी कार्य करो और जरा बाबा कहो तो आपकी उलझन खत्म हो जाएगी, कार्य में विजय हो जाएगी और सफलता प्राप्त हो जाएगी। बाबा कहने से ही हमें सफलता की महसूसता होती है, और बाबा बाबा करने से ही हम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो टेस्टी बनना चाहते हैं उन्हें बाबा बाबा में बहुत निश्चय होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का अब समय कितना रह गया है। आपको मालूम है कितना थोड़ा समय रह गया है। अभी रोज बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं कि अब वक्त जा रहा है, जो करना है सो अभी कर लो। हमें अपने संस्कारों को बदलना है, देवता के समान दैवी गुण धारण करनी है, दातापन की स्थिति बनानी है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, इसी समय बनाना है, और समय नहीं है। और सब चला जा रहा है, समय जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। 79 ईयर से बाबा हमें ये बात कह रहे हैं। तो समय को देखते हुए अभी हमें क्या करना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ की तरफ मुड़ना चाहिए। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन से उमंग उत्साह की लाइट कभी मत बुझने दो, उमंग उत्साह हमेशा रखो, क्योंकि कितनी भी बातें आती हैं, बातें तो जरूर आती हैं, जब हम ज्ञान में चलते हैं तो अनेक विघ्न आती हैं, बाधाएं आती हैं, उलझनें आती हैं, अनेक प्रकार की परिस्थिति आती है, पर उसको पार करने के लिए हमें घबराना कभी नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए बाबा से नई नई बातें सुनकर जो बाबा कह रहा है वो हमें प्रैक्टिकल में धारणा करनी है। रोज दो दो तीन तीन बार बाबा की मुरली पढ़ो, मुरली की गहराई में जाओ। समुद्र में नहाते हैं तो आप ऊपर से किनारे बैठ के जल डालो तो आप लोटे से पानी लेके नहा सकते हैं, बाल्टी से लेके नहा सकते हैं, उसमें वो सुख नहीं है। लेकिन आप समुद्र की गहराई में चले जाइए तो आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, माने ज्ञान सागर की गहराई में डूब जाइए। कब होगा? जब मुरली ध्यान से पढ़ेंगे, दो बार तीन बार, एक एक अक्षर समझेंगे कि बाबा ने आज कौन सी बात हमें बताई, कल कौन सी बात बताई, परसों कौन सी बात बताई, हमें कौन सी बात अपने जीवन में धारण नहीं है वो धारणा में लाना है। तो इस प्रकार से हमें उमंग उत्साह जीवन से कभी नहीं जाने देना चाहिए, और हिम्मत और साहस, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़े भयंकर से भयंकर बातें आ जाए, पर अपने जीवन से हिम्मत नहीं हटने देना चाहिए। जैसे गाड़ी की लाइट होती है वैसे हमारे जीवन का हिम्मत और साहस लाइट है। तो जितना हम लाइट को जब जलाएंगे नहीं तो गाड़ी को चला सकेंगे? तो हिम्मत और साहस से ही जब हम परेशान हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। इसलिए हिम्मत और साहस हमारे अंदर भरपूर होना चाहिए। वो कब आएगा? जितना जितना हम ईश्वरीय आध्यात्मिकता की बातों का अध्ययन करते जाएंगे और बाबा के ज्ञान की गहराई में चलते जाएंगे उतना उतना हमें ये खुशी भी होती जाएगी और हिम्मत और उल्लास भी बना रहेगा। और कई ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं कि बड़ी भारी विपत्ति आ गई, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी देखिए कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है तो अज्ञानी लोग भी कितने घबराते नहीं है। हमने सुना कि एक गृहस्थ के अंदर दो माताएं एक गंगा नदी में स्नान करके आई, और जब स्नान करने गई तो उन्हें गंगा जी में इतनी बड़ी एक सुंदर सी गाय दिखाई दी, वो सिल्वर की गाय। जब वो दिखाई दी तो उन्होंने ले ली, ये बहुत सुंदर है, चमक रही है, लेकिन वो दान की हुई चीज थी किसी की, तो वो ले गई, उसको उठा के सुंदर लगी। तो कहते हैं कि दूसरे दिन ही उनकी बहू बीमार हो गई, वो मर गई, और दो चार दिन के बाद एक और बीमार हो गई, वो भी मर गई। बाकी पंडित लोग तो बताते हैं फिर कि ये दान की चीज छुई है इसलिए ऐसा हुआ है, एक और का मरण होगा। इतनी बड़ी परिस्थिति आई तो भी उनके घर वालों ने भगवान के ऊपर विश्वास रखा कि ये तो इनको जाना ही था, एक बहाना है, लेकिन फिर भी जो गुरु ने पंडित ने कहा वो पूरा काम किया और प्रतिज्ञा कर ली। आज सब भी इस बात की प्रतिज्ञा कर लो कि सोना रूपा हीरा मोती हमें गंगा के जल में कुछ भी मिले पर छूना नहीं है, लाना नहीं है, वो एक संकट का काम है, कुछ भी मिले हमें नहीं लेना है। पराई चीज को हाथ लगाना और छूना लेना बहुत खराब आदत है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है? आप दो अभी देने का काम करो, ज्ञान रत्नों का दान दो, तन मन धन जितना हो सके बाबा की सेवा में लगाओ, मन वचन कर्म जितना हो सके हम धारणा करें तो हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। हमें ना कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना हमारे को किसी चीज से डर है भय, क्योंकि हमारा साथी कौन है? सर्वशक्तिवान बाबा साथी है। जब इतना ऊंचा साथी है और जिसने साथी इतना ऊंचा बना लिया उसको डर भय किस बात का? कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा दुनिया का इंसान, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा माया का आंधी और तूफान, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारी बुद्धि के अंदर कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी कोई लोभ के बस ऐसा काम करता है ना, वो संस्कार नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलता है तो फौरन उसको ठीक करना चाहिए। अभी समय है ठीक करके आगे बढ़ने का समय, अभी पीछे चलने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। तो जितना जितना हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे उतना उतना हम अपना जमा का खाता जमा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कौन सा टाइम है, बैंक बैलेंस का टाइम है। ये ईश्वरीय दरबार एक बैंक भी है। बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो आपका पैसा कहीं जाता है, क्या होता है, बोलो क्या होता है, सेविंग के खाता में ब्याज सहित मिलता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर हम जो भी खाते में जमा करेंगे अपना, चाहे कर्म से, चाहे गुणों से, चाहे शक्तियों से, चाहे ज्ञान रत्नों से, हमारा क्या होगा, जमा होगा, जमा होगा और ब्याज सहित हमें सतयुग के अंदर मिलेगा। ये सबको मालूम है ना कि हमें 21 जन्मों की बादशाही परमपिता परमात्मा अभी देने आए हैं। अगर अभी इस समय हम ढीले हो गए और पुरुषार्थ को टाइट नहीं किया और अपने जीवन के अंदर उमंग उल्लास लाके आगे बढ़ने का काम नहीं किया तो क्या होगा, हमारा पद छोटा हो जाएगा। जितना ऊंचा पद के लिए हम आए हैं, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने के लिए, वो पद की प्राप्ति नहीं होगी। जब हमें भगवान भी मिला, सब कुछ प्राप्तियां हुई और फिर हमने ऊंचा पद नहीं पाया तो क्या कहेंगे कि हमारे पुरुषार्थ में कमी रह गई, हमारे पुरुषार्थ में हम नंबर वार हो गए। पर पुरुषार्थ में नंबर वार नहीं, नंबर वन में जाने का कोशिश करो। तो इसी प्रकार से हमें अभी इस जन्म में संगम युग के समय में जो वैल्यूबल समय है, अपना जमा का खाता हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। मैंने तन से कितनी सेवा की, बाकी किसी प्रकार के तनाव में नहीं आना चाहिए। तनाव में कौन आता है, जो हमेशा देह अभिमान में रहता है। ता माने, ता का मतलब क्या है, तनाव। ता माने तन, तन के भान में रहता है वो तनाव में आता है। ना माने नकारात्मक विचार करेगा, नकारात्मक नेगेटिव सोचेगा वो तनाव में आएगा। बा माने दूसरों की बुरी बात को नजर डालेगा, लेकिन हमें दूसरे को नहीं देखना है। बाबा ने कभी किसी मुरली में कहा है कि किसी के अवगुण देखो, कहा है अवगुण नहीं देखना है, नहीं इसको कहेंगे ये ऐसा है, तो तीन अंगुली मेरी तरफ है। हमें सबकी अच्छाइयों को देखना है और सबसे गुण ले लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे। और एक एक से अवगुण ले लेंगे तो हमारा माथा भारी हो जाएगा, क्योंकि हमारे ही अवगुण के कंकड़ बहुत बुद्धि में भर रहे हैं, और दूसरे के भी ले लेंगे तो माथा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसलिए हमें सबके गुण देखने हैं और अपने कमी को देख करके तुरंत ठीक करना चाहिए। अभी ठीक करने का टाइम है, दूसरे को देखने का टाइम नहीं है। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, द्वापर युग से दूसरों को देखना और उसके अवगुण का गायन करना और अपने जीवन के अंदर एक गुण है उसका वर्णन करना और उसके पास एक अवगुण है तो 16 अवगुण बता के उसका वर्णन करना, ये द्वापर युग से हमने किया है। पर अभी बाबा क्या कहता है कि हमें किसी के भी अवगुण नहीं देखना है, छूना तक भी नहीं है किसी के अवगुण को, बुराई को या किसी की चीज को, हमें इन सब बातों से दूर रहना है। बल्कि अपना खाता जमा का सदा बढ़ाते रहना है। आप देखो आत्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार। स्टार में चार बातें हैं, एस माने स्पीच, स्पीच माना मधुरता, आपकी स्पीच कैसी होनी चाहिए, मधुर मीठी, हर एक के साथ मीठा बोल बोलो, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे और आप ही शीतल होए। तो ये किस लिए कहा जाता है? मधुरता। दूसरी बात टी, थॉट, सदा शुभ भावना, शुभ कामना। मेरे अंदर कभी किसी के प्रति भी अशुभ भावना, अशुभ कामना नहीं आए। हर एक का पार्ट अपना अपना है। जब सबका अपना अपना पार्ट मिला है, फिक्स पार्ट है, हर कल्प में उसको वो पार्ट मिलता है, तो मैं दूसरे के पार्ट की चिंता क्यों करूं? मैं दूसरे को नेगेटिव दृष्टि से क्यों देखूं? तो टी माने थॉट को सदा शुभ रखना, श्रेष्ठ बनाना। और ए का मतलब क्या है? एक्शन। एक्शन माने हमारी चलन। चलन इतनी सुंदर हो जो देख करके लोग कहे कि हमें कुछ सुनाइए, आपके पास कोई चीज है, शायद ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको कुछ वरदान मिला है परमात्मा से, आपके पास कुछ है, आपको छूने लगे। ऐसे ऐसे दादी दीदियों को कैसे दृष्टि से वो ध्यान में चले जाते थे देखते हुए, और उनकी चलन सुधर जाती थी कि हम बड़ों को हमने देखा, एक देवी को देखा, रास्ते चलते एक देवी को देखा, ट्रेन में देवी को देखा, तो ऐसे साक्षात्कार होता था। तो हमारा ए का मतलब होता है अपने एक्शन को 100% ठीक करके चलाना। और फिर होता है आर, माना आपका रिलेशन किसी से दुनिया में खराब नहीं होना चाहिए। सब हमारे दोस्त हैं और हम सबके दोस्त हैं, हमारे सब हैं और हम सबके हैं, और हमारा कोई नहीं है और हम किसी के नहीं है, एक शिव बाबा के। सेवा करने के लिए हमारे सब हैं, हम सबके हैं, लेकिन याद करने के लिए हम एक के हैं, हमारा कोई नहीं है। बाबा कहता है ना, देह को भी याद नहीं करो, किसी को भी याद मत करो, खाली मुझे याद करो, एक मुझे याद करो। तो ऐसी ऐसी बातों का विचार मंथन करने से हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम ज्ञान के सागर में डूबेंगे। एकांत में बैठ करके, एकाग्र स्थिति में बैठकर, एकाग्रता से आप विचार करिए कि मैं अगर दूसरों को देखूंगा और दूसरों के विषय में कुछ सोचूंगा, रिलेशन किसी से खराब करूंगा, तो उसमें किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। हम आपको बताएं एक कहानी और आपको बता देते हैं कि एक राजा था, तो उसकी बहू बहुत दान पुण्य और बहुत भगवान को मानने वाली बहुत बड़े घर की बहू आई। तो लेकिन जो राजा था उसके घर में दान पुण्य भक्ति पूजा कुछ भी नहीं था, और बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी मलाई खाना पीना आराम करना यही सब था उसके घर में। तो एक दिन एक भिखारी आया, तो राजा बैठा था, लेकिन वो भिखारी भीख मांगने लगा, तो उसकी बहू ने कह दिया कि आप आगे जाओ, हम तो बासी खा रहे हैं, आपको क्या दें? राजा को बहुत खराब लगा कि मेरी बहू होकर के इतना माल ठाल सब कुछ होकर कह रही है हम बासी खा रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें क्या दें? तो राजा ने ये निष्कर्ष दिया कि मैं इस बहू को देश निकाला दे दूंगा, ये तो बहुत खराब है। तो उसके दोस्त से पूछी ये बात, तो दोस्त ने कहा ठहरो, धीरज रखो, वो बहू तो ऐसे घर की लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है, आप एक मीटिंग बुलाओ, मंत्री वगैरह सबको बिठाओ, उसके परिवार को बिठाओ, उसके परिवार को बिठाओ, सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया सभा में, फिर वो ही भले आदमी ने, उसके दोस्त ने पूछा कि बहू तुमने ऐसा क्यों कहा? कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो सही कहा कि हम तो बाटा खा रहे हैं और आगे के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ जब से आए हैं यही देख रहे हैं कि खूब खाओ पियो नाचो गाओ ऐशो आराम करो टीवी देखो ये करो वो करो, लेकिन कोई भक्ति नहीं, पूजा नहीं, कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, तो पहले जन्म का तो खा रहे हैं, अब इस जन्म में कुछ कर नहीं रहे हैं तो आगे क्या मिलेगा। तो ठीक का गलत का, ठीक का ना, तो सब लोग बड़े खुश हो गए, आश्चर्य करने लगे कि ये बहू तो बहुत विद्वान है। राजा की भी आंखें खुल गई कि बहुत बड़ी उसको शिक्षा मिल गई और वो उसी वक्त से दान पुण्य करना शुरू कर दिया। तो दूसरे को देख के भी वो सुधर गया और बहू को पूजनीय बना के अपने घर में रखा। लेकिन भावार्थ नहीं समझेंगे तो क्या होगा, उसने गलत समझ लिया। बाटी खा रहे माने पूर्व जन्म का हम खा रहे हैं और इस जन्म में कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, पूजा पाठ भक्ति भजन कीर्तन कुछ भी नहीं है, तो आगे जन्म में क्या होगा, तो हम तुम्हें क्या दें। उसने कहा मैंने तो ठीक बात कहा। जब ठीक बात कहा तो राजा की आंखें भी खुल गई, उसके कान भी खुल गए कि कितनी विद्वान है, उससे शिक्षा लेने लगा, औरों को दिलवाने लगा। तो हम भी पूर्व जन्म में जो अभी करके आए हैं उसके आधार से हमें बाबा की प्राप्ति हुई है और हम यहां तक पहुंचे हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ऊंचे नहीं होते, भाग्यशाली नहीं होते, तो यहां आए होते हैं बताओ। तो आपको पहला नंबर तो यही याद रखना चाहिए कि मुझे कौन मिला है, मुझे कितनी प्राप्ति हुई है। सबसे ऊंचे से ऊंची शक्ति परमात्मा को मैंने प्राप्त किया है और वो इतना ऊंचा परमात्मा मुझे मिला है, इतनी ऊंची शक्ति मिली है पूर्व जन्म के फल से, तो अभी मैं जो करूंगा सो मैं आगे प्राप्त करूंगा। हमेशा बाबा कहते हैं कि जो हम करेंगे वो दूसरे हमें देख के करेंगे और भविष्य में प्राप्ति होगी उसके फल की। तो हमें स्वयं को हमेशा देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। हम भी पहले जब छोटे छोटे थे और आए थे तो सोचा था सब देवता देवता मिलेंगे, तो पुरुषार्थियों को देखने लगे। पुरुषार्थियों को जब देखने लगेंगे तो हमारी अवस्था पर असर पड़ेगा। जब हम बाबा को देखेंगे, इसलिए हमेशा कभी बाबा ने कहा है कि ब्रदर फॉलो सिस्टर फॉलो, कहा है क्या कहा है, फादर मदर फॉलो, मदर फॉलो फादर फॉलो। तो जब फॉलो करना है किसको करना है, शिव बाबा को। मैं जो करूंगा मेरे लिए, दूसरा जो करेगा अपने लिए, पर मैं ऐसा कर्म करूं जो मुझे देख करके दूसरे भी वही कर्म करें, इतना श्रेष्ठ और ऊंचा दूसरा भी बन जाए जो ज्ञान रत्नों से दूसरों को झोली फैलाता रहे और मांगता रहे हमें और ज्ञान सुना और ज्ञान सुना। आज की दुनिया में सब ज्ञान के प्यासी है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कहेंगे कुछ सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। क्यों कहती है, क्योंकि आपने रत्नों की झोली भरी है, आपने बाप को पाया है। सबसे पहला नंबर वन निश्चय कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, मुझे कोटों में कोई मेरी लाइफ है और सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान मैंने उसको प्राप्त किया है। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। एक एक प्राप्तियों को आप गिनो तो बाबा ने हमें कितनी चीजें दी, कितने सारे गुण दिए, नम्रता धैर्यता शांति प्रेम। हमें धरती माता भी धीरज सिखाती है, गंगा हमें पानी देता है, ले हम किसी को क्या देते हैं। ये ज्ञान अमृत बांटे, ये सोच है विचार करें। तो जितना जितना हम विचार सागर मंथन करते जाएंगे उतना उतना हमारी स्थिति स्वयं की अच्छी होती जाएगी और हमें देखते हुए दूसरे भी अच्छे बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, उनको भी बहुत खुशी आएगी। इस सबके बाद में आपको क्या मिलेगा, खुशी। खुशी एक नशा होता है। तो सबसे ऊंची चीज संसार में और सबसे सुंदर चीज और सबसे प्रिय चीज क्या है, शिव बाबा है ना। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, या उससे ऊंची प्रिय अच्छी और कोई चीज है, वो ही है। तो जब हमें वो मिल गया तो उससे बड़ी खुशी क्या है। अब बात है कि वो जो शिक्षा दे रहा है उसको हम धारण कितना कर पा रहे हैं। अपने जीवन में धारणा करें, अपना व्यवहार बहुत रिलेशन अच्छा रखे, एक्शन अच्छा रखे, मुख में सुगर रहे। इसलिए आप 3 फैक्ट्री के मालिक हैं, आप मत सोचना मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। कोई कहे हम गरीब है, नहीं, सब मालिक है। एक है आपका माइंड, वो भी एक फैक्ट्री है। अगर बुद्धि को विशाल बनाना है तो उसके लिए कौन सी है बात, मुरली, पढ़ाई, आध्यात्मिकता का अध्ययन करना, बुद्धि का विकास करना। जितना जितना पढ़ेंगे उतनी उतनी बुद्धि क्या होती जाएगी, शीतल होती जाएगी। तो हमारी जो बुद्धि है वो क्या रहे, ठंडी, आइस फैक्ट्री। बुद्धि क्या है, आइस फैक्ट्री। कोई आपको कितना भी गर्म करके बात करे, आप धीरे बोलो, भाई शांति से बात करो। कई लोग ट्रेन में भी आते जाते हैं, रास्ते में चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, पर आपका काम क्या है, भाई कुछ भी हो गया शांति से बात करो, ये कहते हो ना। तो आप आइस फैक्ट्री के मालिक हो गए ना। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आइस, हमेशा ठंडा। और मुख में क्या होना चाहिए, मीठा, शुगर फैक्ट्री। मुख क्या है, शुगर फैक्ट्री। दिमाग क्या है, आइस फैक्ट्री। हार्ट क्या है, लव फैक्ट्री। सारे विश्व कल्याण के लिए हमारे अंदर लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्या मैं एक का नहीं, लेकिन हम मास्टर विश्व कल्याणकारी है, बाबा विश्व कल्याणकारी है ना, तो हम भी ऐसे हैं। तो आप सब भी क्या हो गए, 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो गए ना। तो ये नशा रखना चाहिए कि बाबा मुझे कहता है बच्चे शांति से रहो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो। लोभ से कोई लाभ नहीं है, वहां लिखा रहता है शुभ और लाभ। दुनिया में लिखते हैं ना शुभ और लाभ, लेकिन शुभ आजकल क्या हो जाता है, अशुभ, और लाभ क्या हो जाता है, लोभ। सब उल्टा हो रहा है दुनिया में, लेकिन हमारे पास कैसा होना चाहिए, सब सुलटा, सब श्रेष्ठ, सब अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा के घर में आने से कितनी शांति मिलती है और कितना अच्छा लगता है, कितना प्यार आता है कि हम बाबा के घर में बैठे। बाबा ने हमें कहां से कहां ले आया, हम कहां थे, पहले इतने अच्छे थे जितने भगवान के बनने से हुए, बोलो पहले इतने अच्छे कोई थे, नहीं। सबके पास काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अभी सब कुछ बाबा ने हमारा बुराइयों को छुड़ा लिया, कीचड़ से निकाल लिया और फूलों के बगीचे में ले आया। ये किसकी कमाल है, शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा भी चलते चलते शिक्षा देते थे बच्चों को और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बात मत पूछो। एक एक अनुभव, एक एक जिस जिसने अनुभव किए, गहरे गहरे अनुभव है। परंतु बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को भी, जो बच्चे पहुंच गए हैं भगवान के घर में, उनको भी बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। ये नहीं कि पहले जो बाबा से मिले उनको ही सब प्राप्ति हो गई, अभी हम क्या लेंगे। अभी भी बहुत भाग्यशाली है जो आत्मा बाबा के घर में आ जाए और बाबा का बन जाए, उससे भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। बहुत भाग्यशाली है, जो अपने को भाग्यशाली समझते हाथ उठाओ, देखो सारी सभा हाथ उठा रही है, क्योंकि सचमुच आप सब बहुत भाग्यवान है। भाग्यवान के आधार से ही भगवान की प्राप्ति हुई है। अब हमारे ऊपर है कि हम जितनी जितनी बाबा की मुरली को मनन करें और वो जो कह रहे हैं हमें वो ही करना चाहिए। आप एक ही बात धारण करो, कोई कहे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो बाबा कहते हैं वो करना चाहिए, जो नहीं कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। नहीं क्या कहते हैं, किसी की बुराइयां मत देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तरफ देखो भी नहीं, झांको भी नहीं। और क्या करने को कहते हैं, अपने जीवन को गुणवान बनाओ, जो इतने गुण है, नम्रता है, धैर्यता है, शांति है, प्रेम है, दृढ़ता है, ये सबसे गुणों से जीवन को भरो। और क्या कहते हैं, शक्तियों से भरपूर करो। और क्या कहते हैं, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो दूसरों को भी बांटो, आप समान बनाओ। आप समान नहीं बनाया तो बाबा क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें इतने रत्न दिए, तुमने कितने तैयार किए, ये बाबा कहते हैं रोज। और एक बात से प्रीति रखो, बाबा रोज मुरली में कभी प्रीति के ऊपर चलाते हैं, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कितनी अच्छी अच्छी बातें रोज सुनाते हैं नए नए प्रकार से। तो जो सुनते हैं वो दूसरों को सुनाए, हम वो ही करें जो बाबा कहते हैं, और वो नहीं करें जो बाबा नहीं कहते हैं। किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी बात में झगड़ना नहीं है, किसी भी बात में किसी के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारा ज्यादा टाइम किस में जाता है, व्यर्थ बात, हमें नुकसान कौन पहुंचाता है, नेगेटिव व्यर्थ बात है, वो सबसे बड़ी नुकसान की चीज है व्यर्थ। जो हमें बाबा कहते हैं निराकारी बनो और निर्विकारी बनो और निरंकारी करो बनो, क्यों नहीं बन पाते, खाली व्यर्थ के कारण। समय व्यर्थ चला जाएगा, वाणी व्यर्थ चली जाएगी, दृष्टि कभी व्यर्थ हो जाएगी, बुद्धि में व्यर्थ बातें आ जाएंगी। तो इसके कारण हम अपनी ज्यादा निराकारी स्टेज नहीं रख सकते हैं। और निराकारी स्टेज माने 100% निर्विकारी। निराकारी स्टेज माना मैं आत्मा हूं, इस बात की स्मृति रखना, उसकी स्मृति में टिक जाना कि मैं स्टार आत्मा या मस्तक में विराजमान हूं, और स्टार के अर्थ को लेकर मुझे अपने जीवन को बनाना है। निर्विकारी माने 100% पवित्रता। ये नहीं कि बस मैं ब्रह्मचारी हो गया तो पवित्र हो गया, और क्रोध कर रहा हूं तो कुछ बात नहीं है, क्रोध भी अपवित्रता है। व्यर्थ के संकल्प जीवन में लाना वो भी अपवित्रता है। तो इस प्रकार से हमें तीनों स्टेज को पाना है तो इन बातों पर ध्यान रखना है। निरंकारी कैसे बनेंगे, जब अपना अहंकार छोड़ेंगे, मैं बड़ा आदमी हूं, बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं वकील हूं, ये सब क्या है, अहंकार है। जितना आप अपने जीवन में नम्रता लाओगे उतना ही सेवा में सफलता मिलेगी, और जितना आत्मा समझोगे उतना पवित्रता का फाउंडेशन पक्का होता जाएगा, और जितना हमारा पवित्रता फाउंडेशन पक्का होता जाएगा उतना हम दूसरों की जब सेवा करेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, और बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति है पवित्रता में, लेकिन अपने ऊपर है, हरेक के अपने ऊपर है, हरेक को अपना अपना पार्ट मिला है। ये नहीं कि दूसरा मुझे बना सकता है या आप जैसे कह वैसे चले, वो तो नकल हो जाएगी। हमें सबको बाबा ने ज्ञानी बनाया है, और ज्ञान के संस्कार सबके अंदर भरे हुए हैं, और सबको बाबा रोज रोज ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान के आधार से हमें अपने आप को बदलना है। जितना जितना हम परिवर्तन करेंगे अपना, उतना हम दूसरे का परिवर्तन कर सकेंगे। कोई कहता है कि पहले दूसरा बदले तब मैं बदलूं, ये राइट है, या ये राइट है कि मैं बदलूं तब दूसरा बदले, क्या राइट है, बोलो। हाँ, तो स्वयं का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, और स्वयं का परिवर्तन दूसरों को परिवर्तन करा सकता है। कोई दूसरा बदले ना बदले, आजकल ऐसा भी जमाना नहीं है कि ये छोटा है यही बदले, मैं बड़ा हूं मैं ना बदलूं, नहीं, छोटे बड़े होते हैं, उनको बड़ा मानो, हम छोटे हैं, ये हमारी निरंकारता है। आप देखो जितने बड़े बड़े महान लोग होते हैं वो अपने को क्या कहते हैं, हम तो छोटे हैं, हम महान नहीं हैं। लेकिन जितने छोटे हैं वो कॉलर उठा के चलेंगे, हमारे बराबर कोई नहीं है। तो बड़ों को भी छोटा बनना पड़े तो कोई हर्जा नहीं है, उसी को नम्रता कहते हैं। ये नहीं हम बड़े के आगे तो ठीक रह जाते हैं लेकिन छोटे के आगे नहीं कह सकते। आत्मा कोई छोटी भी आपसे अच्छी हो सकती है, उससे भी हमें पाठ सीखने को मिल सकता है। हमें तो सबसे पाठ सीखना है और सबके साथ एडजस्टमेंट करना है। और सर्व शक्तियां जो बाबा ने दी हैं, वो शक्ति का हमें आह्वान करना है कि मेरे को जब जिस शक्ति की जरूरत है तब मेरे अंदर आ जाए। अभी कोई जाते हैं युद्ध में लड़ने के लिए तो उनको तलवार की जरूरत होगी तो तलवार उठाएंगे ना, या चाकू उठाएंगे, चाकू से किसी की गर्दन काट सकेंगे? अब सब्जी काटने वाला चाकू और उससे वो दुश्मन को मारे तो मार सकेगा? तो हमारे पास जैसी बात आए उसको उसी प्रकार के हथियार से, उसी प्रकार की शक्ति से हमें खत्म करना है। शक्तियां हमारे हर हथियार है, जब जो जरूरत पड़े, जब सहन करने की जरूरत है तो सहन करो, जब समाने की जरूरत है तो समाओ, जब सामना करने की जरूरत है, कोई परिस्थिति आ गई, कोई लुट गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, तो उसको पार करो। ये तो अपने कर्मों के हिसाब किताब है, तो कर्मों की गुहिता में जाना भी जरूरी है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कैसा जीवन बनाना है, मस्त जीवन, खुशी का जीवन। मुझे तो भगवान मिला और मुझे क्या चाहिए, भगवान से बड़ी और कोई खुशी है? बोलो तो, परमात्मा मिला उसके आगे और क्या चाहिए? सदा खुशी में रहो, खुशी में रहो और खुशी में रखो। गुंजा दादी हमेशा कहती है खुशी की खुराक खाओ, खुशी की खुराक खिलाओ। तो दूसरों को खुशी खुराक कैसे दे सकोगे? मीठी वाणी से, व्यवहार से, बोल से। नहीं तो कोई लोग ज्ञान पहले नहीं सुनते हैं, पहले आपका व्यवहार देखेंगे, पहले आपकी वाणी सुनेंगे। जब देखेंगे बहुत अच्छा बहुत मीठा बोल रहा है तब थोड़ा आपके नजदीक आएंगे, फिर धीरे 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 वो सुनते जाएंगे। और पहले ही दिन आप अगर उसको डरा दें कि यहाँ पर ये कराया जाता है, ये कराया जाता है और ये ज्ञान पाठ पढ़ाया जाता है ब्रह्मचर्य का, इसका उसका, तो वो क्या करेगा? वो ज्ञान में आएगा, भाग जाएगा। तो धीरे 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 हमें उसकी ज्ञान को लोरी दे दे करके पहले सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, फिर अनुभवी हो जाते हैं, फिर वो दूसरों को सुनाते हैं, तभी तो इतना बड़ा झाड़ बढ़ता जाता है। हर टर्न में बाबा से नए नए मिलने कितने आते हैं, बेहद आते हैं, बेहद का घर है, अपना वर्षा लेने आती है, प्राप्ति करने आती है। यहाँ पर जो आते हैं उनको क्या होता है? प्राप्ति होती है, तभी जाते हैं ना, प्राप्ति से झोली भरती है। सवेरे की मुरली कितनी प्राप्ति है। और कोई को कभी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बाबा हमें बताते हैं। और उन सब बातों को हमें करना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए और दूसरों को भी कराना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भी खुद बाप समान बने, बाप जो कह रहे हैं वैसे बने और दूसरों को भी बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो आज सभी से मिलने का सौभाग्य मिला, ये भी हमारा भाग्य है, बाबा ने दिया कि बाबा के बच्चों से मिलो। आप सब हमारे भाई बहन है, हम तो जगत माता हैं, बाबा ने हमें सर्वेंट बना दिया है कि जितनी सेवा हो सके आप दूसरों की करो, तन से मन से धन से, तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का। हम धन बुराइयों में थोड़ी लगाएगा, जो व्यक्ति जा रहा है आश्रम में, कई कहते हैं क्या धन कहां से आता है, अरे आप उसको क्या जवाब दोगे? कोई व्यक्ति को कोई चीज पसंद आ गई, वो कहीं जाता है तो वहीं पर अपना तन मन धन लगाएगा ना, उसको कहां नहीं जाता है, वो आश्रम में आता है, वो देखता है यहां सप्ताह सप्ताह भोग खिलाया जाता है, सप्ताह में दो बार भी खिलाया जाता है, यहां पर सब अच्छा अच्छा है, तो वो तो अपने मन को पहले लाता है फिर तन को ले आता है, तो उसका मन और तन आ गया तो धन कहां जाएगा, धन थोड़ी फिर पंडित पुजारियों में डालेगा। सबसे बड़ी शक्ति तो मन की है ना और तन की है, तो तन की शक्ति और मन की शक्ति बाबा के पास आ जाए तो वो धन के अपना व्यर्थ करेगा। कितने बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो शादी में एक पैसा भी नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? मेरा धन तो बाबा का धन, शादी तो बर्बादी है, मजबूरी में किसी को करनी होती है तो वो करे, लेकिन हम बाबा के बच्चे क्यों करें, उस चक्कर में क्यों जाएं? कितना सहज उत्तर है, हम तो यही कहते हैं भाई पैसे की आप चिंता क्यों करते हो, पैसा कहां से आता है? पहले आपका मन यहां लग जाएगा, तन लग जाएगा, तो धन क्या आप दूसरी जगह डालने जाओगे? आपके पॉकेट में हाथ अपने आप जाएगा और धन अपने आप यहां जाएगा आएगा, और इसको चलाने वाला बाबा है सर्वशक्तिमान शिव बाबा, कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं चला रही है। तो आपको ये प्रश्न ही क्यों उठता है? सबसे पहले लोग आते हैं प्रश्न उठाते हैं कि धन कहां से आता है, बिल्कुल सहज उत्तर है, आप मन लगाओ तन लगाओ, धन की चिंता मत करो, अपने आप आएगा। हर एक बच्चा बाबा का शाहूकार से शाहूकार है, क्योंकि उसका बाप शाहूकार से शाहूकार है, ऊंचे से ऊंचा है। कोई को नहीं समझना चाहिए कि हम मतलब कम है, कम क्यों है, हमें इतना ऊंचा बाप मिला है, सत गुरु मिला है, सत टीचर मिला है, सत बाप मिला है, और एक ही में तीनों समाये हैं, एक को याद करेंगे तो तीनों याद आ जाएंगे। है सब कुछ किसके ऊपर? स्वयं के पुरुषार्थ के, आपका अपना पुरुषार्थ जितना ऊंचा होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी ऊंची स्थिति के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे और प्राप्तियां होती जाएंगी, तो प्राप्तियों से खुशी और नशा बढ़ता जाएगा। अब वो लोग तो नशा करते हैं, उल्टा नशा करते हैं, वो जब वो नशा नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन बाबा के बच्चे तो मुरली का नशा नहीं पिएंगे तो वो मर जाएंगे। हमें तो मुरली का नशा है, भगवान का नशा है, कितने नशा है यहां पर, रोज पीते रहो, रोज अमृत पान करते रहो, जब फिर थोड़ा देखो हमारे जीवन में निराशा आ रही है या कहीं कुछ परिस्थिति आ रही है, फिर से अमृत पियो, फिर से पियो, बार बार पियो, ये नारायणी नशा चढ़ा के रखो, मैं नर से नारायण बनूंगा और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करूंगी, ये नशा जीवन में बनाए रखो तो खुशी अपने आप आएगी, आ जाएगी। अरे हमने किसको जीवन दिया है, कौन हमारा पिता है, कौन हमारा सदगुरु है, कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, हमारे ऊपर तो कितनी परिस्थितियां आई, हमारे लाइफ में बहुत परिस्थितियां आई, बहुत बंधन आई, पर कोई भी हमें कुछ भी रोक नहीं सका, दुनिया के 1000 लोग एक तरफ, हम अकेले एक तरफ, 1000 की एक बात कि तुम वहां नहीं जा सकती हो, हमारी एक बात कि हम जरूर जाएंगे। कोई रोक सका? 50 वर्षों पहले की बात, कोई कुछ नहीं कर सका। और हम ऐसे निकले आए मक्कन से बाहर, क्यों? बाबा की कृपा थी, बाबा का साथ था, हाथ था। कहते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसको सब मिल जाता है। द्वार दया का जब तू खोले, अंधा देखे, गूंगा बोले और लंगड़ा पहुंचे काशी रे। ठीक है ना? कौन सा द्वार? जब कृपा का द्वार वो खोल देता है तो अंधा देखने लगता है, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अज्ञान अंधकार में अंधे थे ना, और गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा काशी पहुंच जाता है। माने कहां भी होगा यह आबू पर्वत पर आ जाएगा, यही काशी है हमारे लिए। लेकिन परमात्मा की कृपा किस पे होगी जो एक कदम बाबा को सब पाने के लिए आगे बढ़ेंगे? तो वो 10 कदम आगे बढ़ के आपको ले लेगा, इतनी कृपा उसकी है। इतनी बाबा की हमारे ऊपर छत्र छाया है कि अगर उसको आपने हमेशा छतरी की तरह अपने सिर पर रखा बनाए तो वो कहीं भी आपको किसी प्रकार से तकलीफ नहीं आ सकती है। हमारा तो अपना खुद 50-52 साल का अनुभव है, ये बाबा को साथी बनाए तो कोई तकलीफ का काम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कोई के पैसा के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, कोई मनुष्य के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर आधारित रहेंगे तो आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन हमारा कोई आधार नहीं है एक शिव बाबा के, तो वो 1000 आधार हमारे लिए तैयार कर देता है, तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं महसूस हुई आज तक भी। आराम माने राम की गोदी में जाओ और आराम करो। उपराम, ऊपर बैठो राम के पास। 3 राम है ना, एक राम घटघटवासी, एक राम का सकल पसारा और एक राम जगत से न्यारा। आपको किस राम के पास रहना है? जगत से न्यारा। जगत से न्यारा कौन है? शिव बाबा, उसके पास रहना है सदा। सदा उसके पास रहोगे तो उपराम स्थिति अपने आप हो जाएगी, समझा? तो ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य कि ईस्टर्न जोन के ही भाई बहन ज्यादा है, ऐसे और जगह के भी है, और हमारा तो सारे विश्व के भाई बहन है, ऐसा कोई भावना नहीं है। हम तो सारे विश्व की सेवा पर हैं। इसलिए आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, बहुत खुशी हुई, और आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना तो जो बातें सुनी उदाहरण करना। दादी क्या कहती है कि स्विच ऑन करने से लाइट आ जाती है। अंधेरा कितनी देर में मिटता है? अंधेरा कोई झाड़ू लगाने से नहीं जाता है, या कोई ऐसा वैसा काम करने से नहीं जाता है, सिर्फ स्विच को ऑन करने से अंधकार मिट जाता है। तो आप याद का स्विच बाबा के साथ 1 सेकंड में जोड़ दो, अंधकार खत्म, सब कुछ खत्म, और हमें क्या मिलेगा? अतिंद्रिय सुख। इंद्रियों से परे सुख की प्राप्ति करनी है तो योग में बैठ करके 1 सेकंड में स्विच ऑन करो, ऑन करके ऊपर चलो। अभी योग में बैठो, ठीक है? अभी योग करेंगे। दादी आ गई है, ठीक है? अभी सुना बहुत, उसको क्या करना है? मनन चिंतन धारण करना है। और कुछ किसी को पूछना है तो बोलो। उसके क्लास कराती रहूंगी, योग कराऊंगी। चलो 10 मिनट में योग करा दूंगी, ठीक है। अभी स्विच ऑन करो और फर्स्ट क्लास योग करो। कोई कहते हमारा योग नहीं लगता है। अब योग का मैं आपको तरीका बता दूं, कई नए नए होते हैं ना, कहते हैं योग नहीं लगता है। अब एक सीढ़ी रखी है, आप एक सीढ़ी पर पैर रखोगे और ऊपर सीढ़ी पर चढ़ना चाहोगे, ऊपर पैर रखना चाहोगे, रख सकोगे? नहीं। तो आपको सीढ़ी वही सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, पौड़ी वही पौड़ी चढ़ना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, योग में विचार सागर मंथन करो। चार सीढ़ी, कौन बोला? ठीक है, आप ये चार पौड़ी है योग की। पहली है आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन। आपका आप कहेंगे इतनी देर क्या करें योग में, आधा घंटा कैसे कटेगा, कैसे योग लगेगा? लेकिन आपका 15 मिनट चला जाएगा आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन। आत्मचिंतन क्या? मैं आत्मा हूं, ब्रह्मकुटी में बैठी हूं, ज्योति हूं, लाइट हूं, स्टार हूं, पॉइंट हूं, माइट हूं, शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये मनन करो। तो इसमें कितने टाइम लग जाएगा? 10 मिनट। फिर परमात्मा चिंतन, मुझे कौन मिला है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनके गुण क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो आत्मा परमात्मा के चिंतन में आपका 15 मिनट चला गया। उसके बाद दूसरी सीढ़ी होती है रू रूहान, आत्मा परमात्मा से बात करो। 15 मिनट गया, 15 मिनट आप बात करो, बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, आप कितने महान हैं, आपने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया है, आपसे ऊंचा संसार में और कोई है ही नहीं, आप प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, तुम करोगे तो तुम में मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, बाबा आप में आप कभी नहीं छोड़ना। कुछ ही बात करो, सतगुरु से रूप से, बाप के रूप से, टीचर के रूप से बात करते रहो। तो 15 मिनट आपका उसमें चला गया आत्मा परमात्मा की बातचीत। तो आपको ना नींद आएगी, ना सुस्ती आएगी, ना झुटका आएगा, कुछ नहीं होगा, बातचीत करो। बातचीत के बाद आप फरिश्ता बनो, सुदर्शन चक्र घुमाओ और फरिश्ता रूप में अपने को देखो कि मेरा लाइट का जैसे चित्र होता है ना, तो एक चित्र को देखते हैं ना, तो वैसे अपने लाइट के स्वरूप को अनुभव करो कि मेरा संसार में किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं एक फरिश्ता हूं। और फरिश्ता संसार में आया हूं बाबा का संदेश देने के लिए। फरिश्ता सफेद वस्त्रधारी होता है, मुझे भी सफेद वस्त्रधारी होकर फरिश्ता बन के उड़ना है। तो फरिश्ता के विषय में आप चिंता करो, फरिश्ता कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर उड़ते हैं जैसे हवाई जहाज उड़ता है, उनको नीचे का कुछ पता अनुभव नहीं रहेगा, कौन बैठा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने बैठे हैं, कुछ पता नहीं रहेगा। ये आपका हो गया तीसरी पौड़ी। चौथी बिंदु रूप बाबा। तो आपको आंख खुले में भी आंख बंद में भी वो बिंदु रूप बाबा की अनुभूति हो जाएगी। पर शुरू में आप बिंदु रूप की अनुभूति करना चाहेंगे तो सुस्ती आ जाएगी। इसलिए विचार सागर मंथन करो, फिर रू रूहान करो, फिर फरिश्ता बनो, सुदर्शन चक्र घुमाओ कि मैं कितने समय कहां रहता हूं, बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, ज्ञान सूर्य की किरणों में मैं नहा रहा हूं, प्रेम सुख शांति आनंद की किरणों में नहा रहा हूं, और नहा धोकर तैयार होकर कहां जाऊंगा, सत्युग में जाऊंगा, मेरे 8 जन्म वहां होंगे, उसका वर्णन करो योग में, सीता का करो, द्वापर का करो, फिर कलयुग का करो, फिर चक्र घुमाओ। 84 जन्मों का पाठ हमारी आत्मा में बनाए। जब इतना सब योग में करते रहेंगे तो सुस्ती का नाम भी नहीं रहेगा। जो कहते हैं सुस्ती आती है, मुझे हंसी आती है कि योग में जब भी सुस्ती आएगी, जब आप मनन चिंतन नहीं करोगे। मनन चिंतन यही जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से सीढ़ी वाई सीढ़ी चढ़ो, मनन चिंतन करो, सुस्ती आएगी नहीं, आराम से योग लगेगा। और अमृत वेले खूब मुंह हाथ धोकर अच्छी तरह फ्रेश होकर के बुरुस वगैरह करके योग करो, कहां भी बैठो, आनंद में डूब जाओगे। इतना अच्छा आनंद आएगा योग में कि उठने की भी इच्छा नहीं होगी, गीत भी बजे ना बजे लेकिन योग में आनंद आएगा। अनुभव करो इन सब चीजों का, जो बाबा बताते हैं ना कि आप मेरे मीठे बच्चे अनुभवी बनो, हर चीज का अनुभव करो। वो तो अनुभव जब ही होगा ना जब प्रैक्टिकल करेंगे, मैं तो बता रही हूं मुख से, लेकिन आप प्रैक्टिकल करो इसे तो आपको अनुभव होगा। और जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर सारे गुण आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। जब हमारा लक्ष्य ही है कि मुझे ऐसा बनना है, सर्वगुण संपन्न, आपका टाइटल क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री महाराज श्री राजकुमार कृष्ण, इतना लंबा आपका टाइटल है। तो आप पूछो, मैं सर्वगुण संपन्न बना, 16 कला संपूर्ण बना, संपूर्ण निर्विकारी बना या नहीं बना, कितना और बनना है? मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, सुबह से शाम तक मर्यादा में चलता हूं, रात को बाबा को पोता मेल दिखा के सोता हूं कि यार आज मेरा चार्ट ठीक रहा। जो पोता मेल दिखाते हैं, बाबा से बात करते हैं, वो हाथ उठाओ, पोता मेल दिखाते हो और आज चार्ट में ये गलती हो गई, कल ये ठीक करूंगा, ये मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, कोई बैरिस्टर बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, और लेक्चरर बनता है, प्रिंसिपल बनता है, वो भी तो मेहनत करता है ना। तो हम नारायण बनेंगे और मेहनत के बिना बन जाएंगे? बिना मेहनत के तो खाना भी नहीं मिलता है, रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब इतने ऊंचे देवता बनोगे, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता, तो देवी देवता बनने में कुछ मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत, दूसरे की चिंता मत करो कौन क्या कर रहा है। आपके पास 100 गुस्से वाले हैं, कहना मानने वाले नहीं है। गुस्सा कब आती है? या तो कोई बात नहीं मानता है, या आपको कोई उल्टा कह देता है। तो आपके पास 100 आसपास हैं जो बात मानने वाले नहीं है, तो भी आप चिंता मत करो, क्योंकि मेरी बात परमात्मा तो सुनता है। आपने तो प्यार उससे किया है या औरों से किया है, तो और लोग बात नहीं मान रहे उसमें मैं क्यों जाऊं? या मुझे किसी ने उल्टा कह दिया तो मुख किसका गंदा होगा, उसका या मेरा? कहते हैं कि एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे और पूजा कर रहे थे, बहुत मगन में, लगन में मगन थे भगवान की में। तो एक बच्चा आया, उसको कुछ 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 रोज कहता था, चिढ़ाता था, कुछ नहीं बोलता था। फिर उसने थोड़े पत्थर फेंकना शुरू किया तो भी कुछ नहीं बोला, फिर उसने गाली देना शुरू की तो भी कुछ नहीं बोला। तो एक दूसरा लड़का आया, उसने कहा, संत जी आपको एक बच्चा रोज गाली देता है, रोज कुछ ना कुछ चिल्लाता है और आप कुछ नहीं बोलते हो, चुप रहते हो। तो उसने क्या कहा कि भाई वो गाली देता है पर मैं लेता ही नहीं हूं, वो चिढ़ाता है मैं सुनता ही नहीं हूं। वो पत्थर फेंकता है, मेरे लगते ही नहीं है, क्योंकि मैं देहमान में नहीं हूं। ये बात उस बच्चे ने सुन ली, वो एकदम चरणों में गिर गया कि महाराज मैं वो ही लड़का हूं। तो किसकी विजय हुई? अगर कोई पत्थर फेंकता है, कोई चिढ़ाता है, कोई गाली देता है, हम उसके ऊपर कुछ कहते रहे तो क्या होगा? हमारी हार हो जाएगी। लेकिन हम साइलेंस, वो रहा संत तो वो जीत गया ना, वही व्यक्ति उसके पैरों में गिर गया। अगर आपको आज कोई उल्टा बोलता है, आप लो नहीं तो आपके पास थोड़ी आएगी बात, उसके ही पास रही। हमें किसी ने बुरा कह दिया, हमने सुना ही नहीं, तो कहने वाले के पास रही ना, हमारे पास क्या रही? हमें क्या चिंता है? हम सुनेंगे तब ना चिंता होगी, जब सुनेंगे नहीं तो क्या चिंता होगी? तो इसी प्रकार से जो हमारे मतलब की बात नहीं है और कोई कहता है तो आप सुनी अनसुनी कर दो, और कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो आप साइलेंस धारण कर दो, तो आप सब चीज से बच जाओगे। कुछ मत कहो, उपराम ऊपर राम के पास बैठ जाओ, और कोई कुछ नहीं सुन रहा है मत सुनने दो, जो जिसको करना है करने दो। हमारा क्या है? जो करेगा सो पाएगा, ये पाठ सीखा है ना, बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा। हम क्यों चिंता करें, हमें क्या जरूरत पड़ी? मारामारी करें, झगड़ा करें, तुम क्यों ऐसे कहते हो, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनते हो, इसमें क्या होगा? आर्गुमेंट होगा, और भी वो नहीं सुनेंगे, जवाब नहीं सुनते। आपको मालूम होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चे अपना ही कॉलर उठा के चलते हैं, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं नहीं किसी की बात मानूंगा, फिर क्या होगा ये बताओ? तो जब जमाना ही ऐसा है और संसार ही ऐसा है, प्रकृति अशुद्ध हो गई है, सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध है, इसमें शुद्धता कहां से आएगी? मेरे मन में शुद्धता आ जानी चाहिए, मेरे जीवन में पवित्रता आ जानी चाहिए, सब कुछ आ जाना चाहिए, मुझे सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अभी योग करो, सुन सुन के थक गए होंगे, ज्यादा नहीं सुनना चाहिए ना, डॉक्टर भी ज्यादा दवाई देता है तो क्या कहते हैं, भाई कुपच हो जाएगा, उतनी दवाई लो जितना वो ग्रहण कर सके, समझा? इसलिए सुने कम करें ज्यादा। क्या कोई का प्रश्न है? हाँ हाँ, आपको माहौल चेंज करना पड़ेगा, हम चेंज कर सकते हैं, अपने ऊपर है। इतनी दूर से पूरा सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर्सनल मिलना मुझसे, मैं बताऊंगी। ओम शांति, अभी योग करो, ठीक है? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम से सुना।